नमोत्थुनर के पाठ को हम कामनाओं के साथ न जोड़कर कर्म निर्जरा के लक्ष्य से करें। पाठ पूरा होने के बाद हमारे तन मन वचन स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। अरिहंत की तरंगों में जाते हैं तो कुछ समय तक शुद्धता बनी रहती है। उस समय हम जो भी कामना करेंगे उसे पूरा होने में वे तरंगे सहयोग करेंगी। आप एक घंटे तक AC चलाया, उसे बंद करने पर भी कुछ समय तक कमरा ठंडा रहता है। एक घंटे तक पंखा चलाया, उसे बंद करने पर भी वो कुछ समय तक हवा देता है। आने वाले व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है। उसी प्रकार नमोत्थुन का पाठ तो कर्म निर्जरा के लिए किया, किंतु उसके बाद हम अगर किसी के सुख शांति की कामना करते हैं तो वह पाठ के बाद रही शुद्ध तरंगों का लाभ है। जिस प्रकार कुवैत में कुआं तेल के लिए खोदा जाता है, उसके साथ ही गैस भी निकलती है, उसे अलग से काम लिया जाता है। खेती गेहूं की जाती है, उसके साथ घास भी मिलती है। इसी प्रकार प्रभु की भक्ति से कर्म निर्जरा के साथ पुण्यफल भी सहज प्राप्त हो जाता है। फिर यदि कोई व्यक्ति किसी इच्छावश भी पाठ करता है तो उसकी संकित नहीं जाती। कृष्ण वासुदेव तथा अभय कुमार ने अपनी माताओं की इच्छापूर्ति के हेतु पौषध सहित तेला किया था तो उनकी संकित कहीं नहीं गई। जो भावुक भक्त अपनी इच्छापूर्ति के लिए मिथ्यात्व के साधनों को अपनाते हैं, उससे तो नमोत्थुन की साधना उन्हें संकित में स्थिर रखती है और किसी न किसी दिन इच्छाओं से ऊपर उठने का अवसर बन जाना है। हम चंदनवाला का उदाहरण देते हैं कि प्रभु के दान लेने से उनके हाथों की हथकड़ी और पैरों की बेड़ियां टूट गई। सारा तन मन जगमगा उठा। परमेष्ठी जाप से सेठ सुदर्शन की शूली का सिंहासन बन गया। श्रीमती के सर्प की माला फूल की माला बन गई। चमरेंद्र भी शक्रेंद्र से बच गया। मैना सुंदरी के द्वारा किए गए जाप से पति का कोर दूर हो गया। 16 सतियों के जीवन में ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जो परमेष्ठी के जाप में भौतिक समस्याओं का समाधान दर्शाती हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में आता है, अनाथि मुनि जी के गृहस्थ जीवन में आंखों में भयंकर वेदना थी। तब उन्होंने संकल्प किया था कि अगर यह दर्द ठीक हो गया तो मैं साधु बन जाऊंगा, और वह दर्द ठीक हो गया। यह भी भौतिक लाभ ही था। आचार्य श्री रामलाल जीमा सा के जीवन में भी ऐसा ही कुछ प्रसंग आता है कि उनके पैर का एक जीमा भी इसी प्रकार ठीक हुआ था। श्रेणिक राजा ने युद्ध जीतने के लिए पौषध सहित तेला किया। हर चक्रवर्ती 6 खंडों पर शासन करने के लिए पौषध सहित 13 तेले करते हैं। यह पौषध सहित तेला भी इस लोक की कामना से जुड़ा हुआ है। सुभद्रा सती ने भी शील का पालन करते हुए नवकार जाप से शहर के बंद दरवाजे खोले थे। संगम के भव में दिए खीर के दान से शालिभद्र के भव में आभूषणों की 33 पेटियां प्रतिदिन आती थीं। यह सब भी तो भौतिक फल के परिचायक हैं। ये घटनाएं जैन समाज के करीब करीब सभी वर्गों में मान्य हैं। तो फिर शक्रस्तव जाप के लिए इतने प्रश्न क्यों? कहीं हम जानबूझकर इस प्रकार के प्रश्न कर भोली जनता को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? आप वर्तमान में भी देख सकते हैं, कोई बीमार है, वह ऑपरेशन कराने जा रहा है। उससे पहले वह संतों से मांगलिक सुनने आता है तो किस इच्छा से? यही न कि उसका ऑपरेशन सफल हो। कोई विदेश जा रहा है, वह मांगलिक सुनने आता है, किस इच्छा से? यही न कि मेरी यात्रा सफल हो। नए व्यापार करने वाला व्यापारी, परीक्षा देने वाला विद्यार्थी भी मांगलिक सुनता है तो सफल होने के लिए, बहुत बार तो शादी करने जाने वाला भी मांगलिक लेने आता है। यह सब भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, और जैन समाज के सभी संप्रदायों के साधु उन्हें मांगलिक सुनाते हैं, जबकि उन्हें मालूम होता है कि वह मांगलिक क्यों सुन रहा है, फिर भी सुनाते हैं। हम किसी भी संकट में भव्यात्माओं को नवकार जाप की बात कहते हैं, वह भी तो संकट को दूर करने के लिए ही है। कई भक्तगण अपने पूजनीय महाराज के गुरु के चरणों को रज लेते हैं, और वह भी काम में लेते हैं, जिससे कि उनके रोग आदि दूर हो। ऐसे में नमोत्थुन के पाठ के साथ अनुचित विकल्प उठाने वाले महाशय अपनी दूषित भावना का परिचय देते हैं, जबकि हम तो यह कह रहे हैं कि पाठ कर्म निर्जरा के लिए करें और पाठ के बाद की तरंगों का भी उपयोग कर लें। पुराने जमाने में कोई व्यक्ति तालाब में पानी पीता था तो हाथों से ऊपर का कचरा हटा लेता था, उसके बाद भीतर का निर्मल पानी पीता था। उसके पीने के बाद हो तत्क्षण दूसरा व्यक्ति भी जब पानी पीता तो उसे कचरा हटाना नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले ने जो गंदगी हटाई उसको वापस आने में समय लग रहा है, तब तक दूसरा भी एक्स्ट्रा में पानी पी लेता था। वही स्थिति यहाँ भी है। अगर हमने पाठ किया और उसके बाद हमारा मन मस्तिष्क अरिहंतों की तरंगों से कुछ समय तक वासित रहता है, उस समय हम जो भी सोचते हैं उसे पूरा करने में वे तरंगे विद्युतीय तरंगों की तरह हमें सहयोग करती हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस स्थान पर एक महिला बैठी है, उसके उठने के बाद 48 मिनट तक ब्रह्मचारी व्यक्ति वहां न बैठे, क्योंकि उस महिला के परमाणु वहां बिखरे हैं। वहां ब्रह्मचारी को बैठने से उसके मन में विकार आ सकता है। यही स्थिति आज के साइंस की है। किसी ने कहीं पर भी दीवार पर हाथ लगाया तो उसकी हाथों की रेखा वहां छप जाती है, जिसे कैमरे में कैच किया जा सकता है। इसे फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। आजकल खोजी कुत्ते हैं जो अपराधी को पकड़ने में काम लिए जाते हैं। जहां अपराधी गया, जिस भी वस्तु के हाथ लगाया, उसके जाने के बाद भी उस वस्तु पर उसके हाथ की गंध रह जाती है, जिसे सूंघकर अपराधी जहां भी हो कुत्ता वहां जाकर उसे पकड़वा देता है। वैसे ही हम अगर नमोत्थुन के पाठ से स्तुति करते हैं तो हमारे हाथों में रुमाल भी हो तो उसमें भी नमोत्थुन की तरंगे भरती चली जाती हैं और जाप करने के बाद उस रुमाल का भी किसी पर प्रयोग किया गया तो वह आरोग्य पाता चला जाता है। अमेरिका में एक ऐसा ऑर्गन बॉक्स बना बताया जाता है जिसमें विचार संग्रहित किए जाते हैं। उस बॉक्स में एक आदमी को सुलाया, तत्पश्चात उसे कामोत्तेजक चित्र दिखाकर एवं बातें सुनाकर सेक्सुअल बना दिया। उस सेक्स भरी भावना के साथ कुछ देर उसे बॉक्स में रखकर बाहर निकाल दिया। उसी बॉक्स में एक शांत प्रशांत सन्यासी टाइप आदमी को सुला दिया। उसको कुछ भी चित्र नहीं दिखाए गए, तब भी वह अपने आप ही सेक्सुअल बन गया। क्यों? क्योंकि उस बॉक्स में पहले वाले व्यक्ति के विचार संग्रहित हो चुके थे। उसी विचार ने दूसरे व्यक्ति को प्रभावित किया। इसी प्रकार हम शक्रस्तव के माध्यम से सिद्ध अरिहंतों की भक्ति करके अपने आप को तो शुद्ध बनाते ही हैं, उसके साथ आसपास के परिसर को भी पावन बनाते जाते हैं। भक्तामर स्तोत्र करीब करीब सारे जैन समाज को मान्य है। आचार्य मानतुन को राजा भोज ने 52 तालों में बंद कर दिया था। तब भक्ति से सराबोर होकर उन्होंने अरिहंतों की भक्ति में 52 श्लोक बनाए। एक एक बनाते रहे और गाते रहे, उसके साथ ही एक एक ताला भी टूटता चला गया। 52 श्लोकों के उच्चारण के साथ ही 52 ताले टूट गए। यही स्थिति कल्याण मंदिर स्तोत्र की है। इसके रचयिता सिद्धसेन दिवाकर थे। किसी कारणवश राजा के आदेश से उनके ऊपर कोड़े लगाए जा रहे थे। कोड़े पड़ रहे हैं महाराज के ऊपर और उसकी चोट पीड़ा हो रही है। राजमहल की रानियों के पीठ पर चमड़ी उधड़ गई। जब राजा ने यह देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने महाराज पर पड़ने वाले कोड़े रोके तो रानियों के ऊपर अदृश्य रूप से पड़ने वाले कोड़े भी रुक गए। इसका कारण था सिद्धसेन के द्वारा किया गया अरिहंतों का ध्यान। अरिहंतों के उपग्रह से जुड़कर सिद्धसेन दिवाकर ने अपने मन को रानियों के मन के साथ जोड़कर पीड़ा को ट्रांसफर कर दिया। यह संभव भी है, जैसे हमारे मोबाइल की चिप आकाशचारी उपग्रह से जुड़ी होती है, तभी उस मोबाइल से हम विश्व के किसी भी कोने में स्थित व्यक्ति के फोन के नंबर डायल करके उससे संपर्क कर पाते हैं। परंतु यदि हम चाहें तो अपने फोन पर आने वाली कॉल को डाइवर्ट भी कर सकते हैं। सिद्धसेन दिवाकर ने अपने पीड़ा को डाइवर्ट कर दिया। अरिहंतों के उपग्रह से जुड़कर हम विश्व के किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि मोबाइल फोन से। शक्रस्तव का पाठ करने के बाद हम देश के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति शुभकामना करते हैं तो उस पर भी यथेच्छा प्रभाव पड़ने लगता है, क्योंकि अरिहंतों का नेटवर्क पूरा विश्व है। तभी वे लोकनाहन लोक के नाथ कहलाते हैं। अगला मैटर भाग 6 में अवश्य पढ़िए।